नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है मुफ्त वोट एहसान तो नहीं, खजाने पर बोझ या जिम्मेदारी से भागने की जुगत। सरकार और जनता का आपस में सहयोग का संबंध होता है। सरकार हमें सुविधा देती है बदले में टैक्स। यह संबंध अब टूट रहा है, कारण कि सरकार ने हमें देने वाली सुविधाओं को रेवड़ी कहना शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि सुविधा चाहिए तो पैसा दीजिए, लेकिन अगर पैसा देने से ही सब कुछ ही मिलता है तो फिर सरकार किस लिए। आज हमारे साथ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघुजी ठाकुर जुड़े हुए। रघुजी, मोबाइल में स्वागत सर आपका।
जी आपको नमस्कार और मोबाइल वाणी के सारे श्रोताओं भाई को नमस्कार।
जी सर, सर रेवड़ी क्या है और इससे सरकार की योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली सुविधा, क्या रेवड़ी कहना उचित है सर?
देखिये, मैं थोड़ी सी इसकी पहले पृष्ठभूमि आपको बता दूं।
जी सर,
कि आजादी के अंदर के दोनों में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी तो उसकी भूमिका कांग्रेस पार्टी में एक जिंजर की भूमिका थी, एक उत्प्रेरक की भूमिका थी। तो उस समय पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की ये मांग होती थी कि सरकार के लिए जो कमजोर तबके हैं उन कमजोर तबकों को राहत देना चाहिए। और इसीलिए जब भारतीय संविधान बना तो समाजवादियों के दबाव में और बाबा साहब की पहल पर संविधान में ये जोड़ा गया कि हम लोग, हमारा जो देश है ये वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब था कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य की जो मूल अवधारणा है जो यूरोप में थी वो यही थी कि जो समाज के कमजोर तबके हैं उन कमजोर तबकों के लिए जो जरूरतें हैं उनको एक ऐसी सुविधा दी जाए कि ताकि वो उसको पूर्ति कर सके। मतलब अगर बाजार में महंगाई है तो उनको सस्ता दिया जाए, उनको यातायात में कुछ रियायत दी जाए ताकि वो लोग यात्रा कर सके, वो उनकी शिक्षा में रियायत दी जाए। तो ये जो राहत देने की जो सुविधा का सवाल था ये वेलफेयर स्टेट में एक प्रकार का अंतर्निहित प्रावधान है कि सरकार का एक दायित्व है कि जो जरूरतमंद है, जो कमजोर तबके हैं उनके लिए मदद करें। और ये सिलसिला लगातार आजादी के बाद भी चलता रहा और चलना चाहिए था। इसमें काफी चीजें आई। इसमें फिर बाद में जो एक यूनो ने एक पहल शुरू की उसके आधार पर कुछ महिलाओं को सुविधा देना का काम शुरू हुआ, वरिष्ठ नागरिकों को सिटीजन के लिए काम सुविधा देने का काम शुरू हुआ और धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई। अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मुफ्त सुविधाएं हैं रेवड़ी हैं ये गलत कह रहे हैं। दरअसल ये एक राजनीतिक भाषा है जो अपने विरोधियों को एक प्रकार से कड़खड़े में खड़े करने का प्रयास है। और जो केंद्र सरकार ये कहती है कि ये मुफ्त रेवड़ियां हैं बांट रहे हैं इनको नहीं होना चाहिए, वो केंद्र सरकार खुद क्या कर रही है? अगर बिजली को सस्ता देना ये रेवड़ी है तो 5 किलो अनाज देना क्या है? बिजली को या पानी को सस्ता देना या पानी को मुफ्त देना एक सीमा के बीच में ये अगर रेवड़ी है तो फिर जो भारत सरकार सुविधाएं प्रदान कर रही है वो क्या है? और उन भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं वो जो सुविधाएं के नाम पे जो पैसा बांट रही हैं, अभी लाडली बहनी योजना है, किसान सम्मान योजना जो खुद प्रधानमंत्री ने शुरू की थी 6000 रुपए साल की, ये सब क्या है? तो ये कुल मिलाकर एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर खेल चला हुआ है। मुफ्त सुविधाएं देना या कम कीमत पर सुविधाएं देना ये सरकार का जरूरतमंदों के दायित्व है। दूसरी बात यह है कि ये कोई वोट को खरीदना नहीं होता है। सरकार सुविधाएं देती है, अगर मतदाता में क्षमता है और मतदाता में समझ है तो मतदाता तय करेगा भाई हमको वोट देना कि नहीं देना। परंतु सुविधाओं को लेकर के उसको कोई खरीद के मान रहा है, खरीद रहे उचित नहीं है। तो जो फ्री व्हील की चर्चा की जा रही है, फ्री व्हील की चर्चा करने का कारण दरअसल एक तो भारत सरकार की या राज्य सरकारों की जो सूबाई राजनीति और केंद्रीय राजनीति इसका परिणाम है। दूसरा एक और इसका महत्वपूर्ण पक्ष वो ये है कि अभी जो दुनिया की वैश्विक कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उन कॉर्पोरेट कंपनियों को अपना माल बेचने को पैसा चाहिए। अब जब ये कोई राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है या अपने देशों में कोई ऐसी सुविधाओं में पैसा लगाते हैं तो वो पैसा जो है वो बजट से पैसा जाता है। जब वो बजट से पैसा जाता है तो जो व्यवस्थित खरीद फरोख्त है उसमें कमी आती है। तो जो दुनिया की कंपनियां हैं, ये दुनिया की कंपनियों का एक प्रचार चला हुआ है कि सारी फ्री वीज बंद होना चाहिए और वो इसके पीछे उनका उद्देश्य है कि आपके यहाँ का जो बजट है ये बजट का जो पैसा है ये पैसा उनके पास पहुंच जाए उनके बाजार के लिए, उनके लिए पैसा उपलब्ध रहे, क्योंकि अगर बजट का कुछ पैसा आपके जनता की सुविधाओं के नाम पर जाता है तो वो उस टोटल में से कम हो जाता है, तो उनके बाजार के लिए, उनकी बाजार के व्यापार के लिए वो इस प्रकार का एक प्रचार कराते हैं कि फ्री बीज फ्री बीज, फ्री बीज नहीं है ये, लोगों की जरूरतमंदों के लिए है। अब भारत सरकार ने खुद ये कहा था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, किसान की आय वो सीधी दुगनी नहीं कर पाए, पर अगर मान लो उनने तय किया कि भाई 6,000 रुपये हम देंगे किसान के लिए सम्मान निधि के रूप में देंगे, तो एक प्रकार से उनके लिए जरूरतमंदों को मदद करना है। जैसा एक जमाने में आपको याद हुआ कि बोनस का सिलसिला शुरू हुआ था, जो बोनस की मांग थी, बोनस क्या था, बोनस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बोनस द डेफर्ड वेज, यानी जो वेतन दिया जाता है उस वेतन में जो कमी होती है उस कमी की पूर्ति बोनस के नाम से होती है, कि भाई हमको मुनाफा हुआ, कंपनी को मुनाफा हुआ, आप 33% तक इसका बोनस दे सकते हैं। हालांकि अभी भारत सरकार उतना नहीं दे रही, कहीं 8% दे रही, कहीं 10% दे रही है। तो बोनस जो है ये बोनस कोई फ्री बीज नहीं है, सम्मान निधि कोई फ्री बीज नहीं है, 5 किलो अनाज कोई फ्री बीज नहीं है, बिजली का सस्ता करना कोई फ्री बीज नहीं है, परंतु इसको राजनीतिक दोषारोपण में से किया जा रहा है कि लोग चाहते हैं कि उनको चुनाव जीतना है तो जो सुविधा आप दे रहे हैं वो बंद हो जाए, हम तो दे रहे हो चालू रहे। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं तो प्रधानमंत्री जी का दिमाग ये चलता है कि भाई अगर दिल्ली में कोई सुविधा बट रही है बिजली की पानी की तो ये बंद हो जाए, जो दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य है वहां कोई सुविधा हो रही तो बंद हो जाए, तो उनकी सुविधा चालू रहे, तो वो जो देंगे वो रेवड़ी नहीं है, दूसरा जो देंगे वो रेवड़ी है। तो ये गलत परिभाषा है, एक प्रकार से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल है और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। जी योग जी,
जी सर, सत्तारूढ़ पार्टियां आरोप लगाती है कि वोटों के लिए मतदाताओं को बरगलाया जा रहा है ऐसी योजनाओं से, सर कैसा देख रहे हैं?
इसमें क्या बुराई है, अपना कार्यक्रम जारी करते हैं और उसके पीछे वोट का उद्देश्य, किसका वोट का उद्देश्य नहीं है? अरे भाई भारतीय जनता पार्टी तो मंदिर भी वोट के लिए बनाती है और मंदिर के नाम पे पैसा भी वोट के लिए खर्च करती है। अभी जैसे मध्य प्रदेश में उनके लिए लगा कि भाई हमको अनुसूचित जाति के लोगों के वोट चाहिए है, तो उन्होंने रविदास जी का 100 करोड़ का मंदिर बनाया, उन्होंने ऐलान किया, उसकी शिलान्यास किया। भाई पिछले 70 साल में तो कभी भारतीय जनता पार्टी को रविदास की याद नहीं आई, अभी वोट के लिए याद आई। आदिवासी के वोट के लिए उन्होंने बिरसा मुंडा को भगवान बना दिया, यानी हम लोग यहाँ लोग कहते हैं कि साहब भगवान ने दुनिया बनाई है, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इंसानों को भगवान बना रही है। तो ये वोट के लिए लोग करते हैं, इसे कोई बुराई नहीं है, तो लोकतंत्र में होता है, अपने भी लोग घोषणा करेंगे, जनता है, जनता जिसको उचित मानेगी उसको फैसला करेगी।
जी, भोजन हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो जैसी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाओं से क्या भागा जा सकता है और क्या वही कई अर्थशास्त्र देश की जो जो अभी बोझ पड़ रहा है वो इन योजनाओं से पड़ रहा है, सर इसको कैसे देख रहे सर?
देखिए इन योजनाओं से जो बोझ बढ़ रहा है, ये बोझ बढ़ना नहीं मानिए, उसको ये मानिए कि आप अपने टैक्स कलेक्शन का जो देश का रेवेन्यू है उसका एक हिस्सा खर्च करते हैं, ठीक है ना, और इसे खर्च करते हैं कि ये एक प्रकार का ये मानवीय प्रदर्शन है, मानवीय जरूरत है। मतलब जैसे कोरोना काल आया, आप कोरोना काल में जो लोग पीड़ित हुए अगर उनके किसी एक हिस्से को कुछ सरकार मदद करे तो ये कोई खैरात नहीं है। तो एक तो ये समझना चाहिए कि ये कोई बोझ नहीं होता है, बोझ किस बात का है भाई, ये जो हमारा बजट है ये बजट किसका है, ये बजट कोई सरकार के कंपनी से पैदा नहीं होता है, ये कोई बजट सरकार पैदा नहीं करती है, ये बजट देश की जो जनता है वो जनता जो भी मेहनत करती है, परिश्रम करती है, जो टैक्स देती है उसका है, तो इसकी मालिक तो जनता ही है ना, तो जनता का पैसा का अगर कुछ हिस्सा जनता पे खर्च हो रहा है ये बोझ नहीं मानना चाहिए। बल्कि बोझ तो दूसरे हैं, अगर आप अदानी का, अंबानी का, कॉर्पोरेट का टैक्स माफ करते हैं, उनका ब्याज माफ करते हैं, उनका कर्ज माफ करते हैं, उनको फ्री सुविधाएं बांटते हैं, उनका टैक्स घटाते हैं। अब आप देखिए कि भारत सरकार ने जो कॉर्पोरेट कंपनियों के ऊपर जो टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी लगती थी, उसको 5% कम कर दिया। तो जो आप संपन्न और ताकतवर लोग हैं, जो दुनिया के कॉर्पोरेट लोग हैं, उनके टैक्स में आप 5% कटौती कर रहे हैं, ये बोझ है, जनता के लिए राहत देना बोझ नहीं है। दूसरी बात एक जरूर मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें स्थायी नहीं होती। हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी सोचना चाहिए कि हम आखिर 5 किलो अनाज के लिए या 100 यूनिट बिजली फ्री होने के लिए या 1 रुपया यूनिट की बिजली के लिए या 500 का गैस सिलेंडर के हम लाचार क्यों है। तो ये जो राहत है ये राहत को स्थायी चीज नहीं बनाना चाहिए, राहत क्रांति को रोकने का माध्यम नहीं होना चाहिए। एक जरूरतमंद की जरूरत की पूर्ति के लिए राहत ठीक है, परंतु इंसान को उस बदलाव की कल्पना करना चाहिए कि जिसमें कोई देने वाला ना रहे, कोई लेने वाला ना है, सब लोग बराबर रहे। अगर दुनिया में एक बराबरी आए, देश में बराबरी आए, आमदनी का जो है, जैसे हम लोगों का नारा था समाजवादी जी को, लोहिया जी जो कहते थे कि 100 से कम ना 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। अगर देश की जो आमदनियां हैं वो 1 और 10 के बीच के अंतर में आ जाएं, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मांगेगा नहीं, फिर क्यों मांगेगा। तो इसलिए व्यवस्था को बदलने के लिए हमें स्थायी रूप से कटोरा लेके भिखारी ना बनना पड़े, इसके लिए भी समाज को, मतदाताओं को सोचना चाहिए कि हमको ये जो सुविधा है, ये सुविधा हमने व्यक्ति तौर पर ली है, परंतु हमको अंततः इस व्यवस्था को बदलना है। तो मतदाता अगर उस सुविधा को अस्थाई सुविधा के रूप में स्वीकार करके और भविष्य में बदलाव के लिए अपना मन बनाए, तो फिर मेरे ख्याल से समस्या नहीं होगी।
जी सर, सर क्या देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी जो सत्ता है वह लाडली बहना योजना लाई है, और साथ में जो विपक्ष की जो पार्टियां है वो सत्ता में आने पर नारी सम्मान योजनाएं लाने का वादा कर रही है। सर इसको किस तरीके से देखते सर?
देखिए इन दोनों में होड़ मची हुई है। पहले उनने कहा कि हम 1000 रुपए देंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 1500 देंगे, तो 1500 के फार्म भरवाने शुरू हुए, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि नहीं, हम इसको 250 रुपए बढ़ा के 3000 तक ले जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के लोगों को लिए ये जो प्रयास है, ये राहत के प्रयास नहीं है, ये है लोगों के वोट खरीदने के प्रयास। दूसरा, इस प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव भी कई प्रकार के भ्रामक सवालों पर है। अभी देश में, प्रदेश में, मध्यप्रदेश में खास करके 2 बजरंग बलियों में चुनाव है। एक बजरंग बली भाजपा के हैं, एक बजरंग बली कांग्रेस के हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम बजरंग बली की पूजा करके चुनाव जीतेंगे, भाजपा कह रही है हम चुनाव पूजा करके चुनाव जीतेंगे। तो अब कौन से बजरंग बली जीतेंगे? ये चुनाव इस प्रदेश में जनता के लिए तो है ही नहीं, ये तो 2 बजरंग बलियों का चुनाव है। एक बजरंग बली बी है, एक बजरंग बली सी है, तो बजरंग बली बी जीत जाएंगे, एक बजरंग बली सी जीत जाएंगे। कुल मिलाकर के एक प्रकार का जो अंधविश्वास है, एक प्रकार के जो दिमागी पुरानी पुरातन प्रति सोच है, उनका इस्तेमाल है। और दूसरा, राजनीति के लिए आप धर्म का प्रयोग कर रहे हैं जो असंवैधानिक है। हमारे संविधान के मुताबिक धर्म व्यक्ति की अपनी वैयक्तिक भावना है। आप अपने धर्म का पालन करिए, आप बजरंग बली को मानिए, आप शंकर जी को मानिए, आप कृष्ण को मानिए, आप अल्लाह को मानिए, या मोहम्मद साहब को मानिए, क्राइस्ट को मानिए, इसको मानना मानिए, परंतु राजनीति के लिए नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय नीति के लिए नहीं है। अब अगर मान लो सरकारें बजरंग बली के नाम पर चुनाव लड़के जीते हैं, तो कल फिर क्या परिणाम निकलेगा? फिर सचिवालय में बजरंग बली के मंदिर बनेंगे, फिर हर सचिव के दफ्तर में भी बजरंग बली की मूर्ति रखी जाएंगी, तो हम देश को कहां ले जा रहे हैं? जो संविधान कहता है कि संविधान का हमारी भावना है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है, राष्ट्र सब धर्मों को सुविधा देता है। हमारा संविधान कहता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार का धर्म तो जनता की सेवा करना है, और सरकार का काम केवल इतना ही होता है कि सरकार सब धर्मों को बराबर समझे, भेदभाव न करें। परंतु जब एक धर्म के आधार पर आप जा रहे हैं, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई इसमें भाजपा का कांग्रेस फर्क क्या है। जो भाजपा का एजेंडा था कि सरकार का धर्म, सरकार एक धर्म के लिए पक्षपात करे, समर्थन करे, वही काम अब कांग्रेस करने लगी। तो ये इनको भी बजरंग बली लगाना है, उनको भी बजरंग बली लगाना है, तो अंतर क्या बताइए हमको आप। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों केवल प्रदेश की मतदाताओं को मतलब कहना चाहिए गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। हम जो समाजवादी सोच के लोग हैं, हमारा सोचना है कि ये इंसान की अपनी आजादी है कि वो ईश्वर को माने, वो ना माने, वो बजरंग बली को माने ना माने, वो अल्लाह को माने ना माने, ये उसका निजी काम है। धर्म इंसान का निजी होता है, सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। सरकार का धर्म ये है कि सरकार किसी के साथ में धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर, लिंगिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर कोई भेदभाव ना करें। परंतु जो सरकारें बन रही हैं, जो प्रतिपक्ष है, ये सब लोग इन आधारों में भेदभाव करते हैं, क्षेत्रीय आधार में भेदभाव करते हैं। अब मुख्यमंत्री जी बने थोड़े दिन के लिए कमलनाथ, तो वो अपने क्षेत्र के लिए जो कर रहे हैं, हम शिवाला के लिए कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी बने तो वो अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कर रहे हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो जो विश्वविद्यालय सागर में खुलना था, राजकीय विश्वविद्यालय, उस पैसे को ले जाकर उन्होंने छिंदवाड़ा में बना लिया। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस वहां के राजकीय विश्वविद्यालय का जो पैसा था उसको ले जाके छतरपुर में लगा दिया। अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो जिला भी नहीं है वहां पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो ये जो पक्षपात है क्षेत्रीय भेदभाव का, इसका ये गलत है, ये असंवैधानिक है, ये अवैधानिक है, और ये एक अर्थ में आधार्मिक भी है। धर्म सबको समान चाहता है, धर्म इंसान इंसान के बीच कोई फर्क नहीं करता है। इंसान पहले जन्म लेता है फिर धर्म बाद में आता है, तो इंसान इंसान बराबर होता है। पर जो पार्टियां ये भेदभाव करती है क्षेत्र के आधार पर, वो धार्मिक तो हो ही नहीं सकती, वो तो अधार्मिक है।
तो ये थे हमारे साथ में रघु सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर मुफ्त वोट एहसान तो नहीं इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं मोबाइल वाणी के साथ साझा की। रघु सर मोबाइल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।